તારીખ 5/7/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 172 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 46 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ધીમો છે તથા ડિસ્ટર્બન્સ છે.
दुनिया में ऐसा संबोधन किया है पत्र का विषय है कि सत्पुरुष के प्रति किस दृष्टि से देखना किस प्रकार से अवलोकन करना जिससे अपना आत्मकल्याण हो यानी परिणमन में निर्मलता की प्राप्ति हो. हिंदी वालों से बता गुजराती से बता परम भक्ति क्रॉस दिखाने वाला दर्शाने वाला आपका पत्र मिला. आह्लाद की विशेषता परम भक्ति से लिखा हुआ पत्र मिला. पत्र में बहुत अच्छी भक्ति थी, परम भक्ति थी. प्रभु की भक्ति तो प्रसिद्ध है, बहुत भक्ति वाले थे, अनहद भक्ति. भक्ति की कोई सीमा नहीं, ऐसी भक्ति. और आह्लाद की विशेषता थी भक्ति देखते
हुए
खुर्सी से खुर्सी से खुर्सी ऊपर क्या बे खुर्सी से बीजी खुर्सी हो आप बेसो खुर्सी छे बीजी खुर्सी छे बीजी खुर्सी कृपालुदेव ने सत्पुरुष के प्रति भक्ति मान को बहुत रिस्पॉन्स दिया है. आह्लाद खुद को होता है क्यों कि एक ऐसा परिणाम है जिससे मुमुक्षु जीव के मलिनता का सहज मात्र में आसानी से अभाव होता है. ये कारण है इस प्रकार की निर्मलता और दूसरे किसी भी क्रियाकांड से या किसी भी प्रकार से नहीं होती. ऐसे तो तीन प्रकार के परिणाम धर्म के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं. एक तो तत्वज्ञान के क्षेत्र में जो तत्वज्ञान का शास्त्राभ्यास करते हैं, एक दूसरे ऐसे भी हैं जो व्रतादि लेकर के क्रिया करते हैं, क्रियाकांड इसको कहते हैं, ज्ञान कांड क्रियाकांड। तो तीसरे भक्ति के परिणाम होते हैं। तीनों में से भक्ति के परिणाम ऐसे हैं कि जो सहज ही अपने आप को विनम्रता में विनय में ले जाते हैं, इसलिए अहम भाव को उत्पन्न नहीं करते हैं। जबकि ज्ञानाभ्यास करने वाले को या क्रिया करने वाले को अहम भाव आना वो रोक नहीं सकेगा, उसको अपने आप के अहम भाव को वो रोक नहीं पाएगा। क्यों कि सम्यक दर्शन के पहले पर्याय दृष्टि होती है और सम्यक दर्शन होने से ही द्रव्य दृष्टि होती है। द्रव्य दृष्टि में तो सहजात्म स्वरूप की जो दृष्टि है उसमें तो सभी आत्मा एक सा मालूम पड़ता है, सर्वात्म में समदृष्टि आ जाती है। सभी आत्मा में समदृष्टि आने से अहम भाव नहीं होता है, ज्ञानी को अहम भाव नहीं होने का यही कारण है कि द्रव्य दृष्टि में वो सभी आत्मा को मूल द्रव्य से मूल सत्ता से देखते हैं। जबकि इसके पहले मुमुक्षु दशा में पर्याय दृष्टि अनादि से चालू होने से पर्याय में जो भी कुछ प्रकार की विशेषता होती है उसका अहम भाव होना सहज होता है, सहज अहम भाव हो जाता है। पहले इतना ज्ञान नहीं था, इतना शास्त्र का अभ्यास करने से ज्ञान बढ़ा तो ज्ञान का बोध हो जाएगा। पहले उतनी क्रिया नहीं करते थे, अभी उतनी क्रिया करने लगे तो उसका अहम भाव हो जाएगा। यानी क्रिया का संबंध परद्रव्य के साथ है, मन वचन काया के योग के साथ संयम का संबंध होने से परद्रव्य की क्रिया में अहम भाव आ जाएगा। मैं इतना कर सकता हूँ, इतना त्याग कर सकता हूँ, इतना संयम पालन कर सकता हूँ, इतना व्रत ग्रहण कर सकता हूँ। तो ये जो अहम भाव है वो साथ ही साथ एक नया दुर्गुण हो गया। उसको रोकने के लिए मुमुक्षु की भूमिका में क्या करना है? कि मुमुक्षु की भूमिका में ये जो भक्ति प्रधानता है वही एक ऐसा उपाय है कि जिससे अहम भाव जो बड़ा दुर्गुण है वो रोका जा सकता है। इसलिए इस प्रकार के उपदेश में भी यही बात मुख्य रूप से आई है। तो यहाँ पत्र में भक्ति परम भक्ति दर्शाने वाला पत्र था, तो खुद पत्र लिखने वाले को रिस्पांस देते हैं कि हमको आह्लाद हुआ है, ये पत्र पढ़ करके हमको आह्लाद हुआ है। तो सत्पुरुष के महापुरुष की चित्त की प्रसन्नता का वो निमित्त बना, ये भी एक परम सौभाग्य है। वो सत्पुरुष के चित्त प्रसन्नता का निमित्त बनता है पत्र, ऐसा पत्र लिखा है। आजकल तो ये पत्र मिलते हैं नहीं मिलते हैं ऐसे बहुत से पत्र सब प्रसिद्ध हुए हैं, मिलते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ऐसे इस पत्र का ये उत्तर है ऐसा मिलता है ऐसा नहीं ये कैसा पत्र होगा जिससे कुरुपरो देव के चित्त प्रसन्नता होगी, एक देखने लायक चीज होती है। अच्छा संशोधन करना चाहिए। अनंत काल से अपने आप को अपने विषय में ही भ्रांति रह गई है। अनंत काल से जीव की सभी संसारी जीव की यही अवस्था है कि अपना मूल स्वरूप से वो अनजाना है, अनजाना है तो मूल स्वरूप को जानता नहीं, तो अपने आप को जैसा नहीं है वैसा जानता है, उसको भ्रांति कहते हैं। वो भ्रांति कैसी है कि कर्म जनित अवस्था को अपना मूल स्वरूप, अपना स्वरूप जान लेता है। जैसे अभी मनुष्य हुआ तो मैं मानस हूँ, मनुष्य हूँ, ऐसा ही उसको अनुभव रहेगा। जो तिरियंश हुआ जो जीव, उसको मैं ऐसा ही अनुभव होगा कि मैं ऐसा ही हूँ। चारों गति में देव पर्याय में जाएगा तो मैं देव हूँ ऐसा अनुभव करेगा। वास्तव में ऐसा होता तो ये जाता नहीं, वैसा का वैसा रहता है। लेकिन ये तो कर्म जनित अवस्था है, कर्म के फल में मिली हुई अवस्था है। मूल स्वरूप जीव का ऐसा नहीं है, फिर भी ऐसा मानना, ऐसा अनुभव करना, उसको भ्रांति कहते हैं। भ्रांति अज्ञान की पर्याय है और मान्यता श्रद्धा की पर्याय है। ऐसा मानना, गलत मानना, वो मिथ्या श्रद्धा है। ऐसा गलत अनुभव करना, वो मिथ्या ज्ञान की पर्याय है, वो भ्रांति, उसको भ्रांति कहते हैं। अनंत काल से अपने आप को अपने विषय में ही भ्रांति रह गई है। यह एक अवाच्य अद्भुत विचारणीय स्थल है, इसका बड़ गहनता से विचार करना चाहिए। अवाच्य मैंने जिसको बोल नहीं सके, ऐसा कह नहीं सके, बता नहीं सके, ऐसा स्थल है। तो कैसी भ्रांति होगी? सारे संसार के दुख का मूल कारण यही भ्रांति है कि अपने आप को वर्तमान दशा रूप पूरा का पूरा मान लेता है, मैं फलाना, तो वहां से सभी दुख पैदा होता है। क्योंकि फिर इसी आधार पे वो सारे कंस्ट्रक्शन परिणामों का करता है, मेरा ये फर्ज है, मेरा ये हक है, मेरा ये दरदावा है, मेरा ये वो है, वो है, वो है। तो यहाँ से क्लेश, अशांति और सभी प्रकार का दुख यहाँ से उत्पन्न होता है। यह एक अवाच्य स्थल है, अद्भुत विचारणा का स्थल है, बहुत गहरी विचारणा करने लायक ये स्थल है। यहाँ जहाँ तक इस समस्या का समाधान नहीं हो, वहाँ तक इसकी गहराई में जाकर के इसकी विचारणा करनी चाहिए, वरना दुख मूल से नहीं जाएगा। संसार के सभी मनुष्यों की एक समस्या है कि दुख क्यों होता है हमको, हमें दुख नहीं चाहिए फिर क्यों होता है, हम नहीं चाहते हुए भी क्यों होता है। ये बहुत बड़ी समस्या है संसार के सभी प्राणियों की। इसका मूल यहाँ दर्शाया है, इसका मूल कारण है अपने विषय में हुई भ्रांति, ये मूल कारण है। दुख का, दुख एक रोग है जीव की अवस्था का, और ये रूप, इस रोग का मूल कारण, रूट कॉज, ये भ्रांति। फिर तो जो बालक है वो बालक समझेगा, युवान है वो अपने को युवान मानेगा, वृद्ध है वो वृद्ध मानेगा, पुरुष है पुरुष मानेगा, स्त्री स्त्री मानेगा। फिर तो जो भी जितना कर्मजनित अवस्थाएं हैं, निर्धन है, सदन है, दुरोगिष्ट है, निरोगी है, जो भी सब सारे, फिर इसके पर ही देहार्थ जो भी कल्पना होती है, देह सहित पड़ा मान लेता है। जबकि आत्मा स्वयं अशरीरी तत्व है, विदेही तत्व है। देह तो कर्म के कारण से इसका देह का संयोग हुआ है, जैसा जैसा परिणाम किया है वैसा वैसा देह का संयोग हुआ है, लेकिन वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। तो देह वाला मानना यही आधार झूठा खोटा आधार है, यही गलत आधार है, तो जिस कारण से जीव को दुख होता है। मैं आत्मा हूं ऐसा अनुभव ऐसा ज्ञान होने पर दुख नहीं होता। सबसे बड़ी बात वो है कि हर हालत में आत्मज्ञानी को दुख नहीं होता है, वो सुखी ही सुखी रहता है। चाहे चार गति में कहीं भी पूर्व प्रारब्ध से उनका रहना हो गया संसार में, उसको दुख नहीं होगा। मूल मतलब की बात सुख दुख की होती है सभी सब जीवों को, और इसका समाधान यहाँ पर है, इस सद ग्रंथों में इसका ही समाधान है। इस जीव को कैसे दुख का अभाव हो, दुख का नाश हो, और सुख की निराकुल सुख की प्राप्ति हो, क्या पौद्गलिक सुख की नहीं। पौद्गलिक सुख तो दुख की ही एक काल्पनिक अवस्था है कि इसमें सुख है, वास्तव में वो दुख है, पर निराकुल है, निराकुलता है वही सुख है। और इस सुख दुख की समस्या का समाधान आकुलता का नाश करने का, आकुलता दुख का स्वरूप है, इसकी समस्या का समाधान ये ज्ञानियों के वशिष्ठ हमें दिया है। जहां मति की गति नहीं है वहां वचन की गति कहां से हो, क्यों कि किसी की मति नहीं चलती है। बुद्धिमान लोग बहुत हैं, पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, बड़े बड़े भौतिक विज्ञान के संशोधन करने वाले विज्ञानी से लेकर के बड़े बड़े आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़े हुए, कायदा के क्षेत्र में सुप्रीम जज सुप्रीम कोर्ट के जज भी होते हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान होते हुए भी अपने सुख दुख की समस्या को का समाधान उन लोगों के पास। सभी संसारी जीव भीतर में दुख है, किसी को किस प्रकार का, किसी को किस प्रकार की उपाधि आदि व्याधि उपाधि से ग्रहित है, उनको छुड़ाने के लिए यहाँ पर बात है। तो संसार में जिस वहाँ मति नहीं है, बुद्धि है लेकिन इस प्रकार की मति नहीं है, तो वचन से तो उस बात को कैसे समाधान में ले आए, तो नहीं ले सकता। इसके लिए क्या करना है? अब यहाँ से बात चालू होती है कि इसके लिए क्या करना है? निरंतर उदासीनता का क्रम सेवन करना, उदासीनता वाली बात आई, निरंतर उदासीनता का क्रम सेवन करना। किससे उदासीन होना? सभी से उदासीन होना, जो भी अपना उदय है वही अपना संसार है, वही अपना अपनी दुनिया है, अपना जगत है, दूसरे से कौन लेना देना है, कोई जानता नहीं पहचानता, इससे तो कोई लेना देना किससे है ही नहीं। जो कुछ गड़बड़ होती है वो तो जहाँ जान पहचान होती है, जहाँ संबंध माना गया है वहीं होती है। तो ये उदय भाव है जिसके साथ परिणाम लगता है, उदय के पर अंदर में कर्म प्रकृति का उदय है, बाहर में कोई ना कोई निमित्त पड़ता है जिसका संयोग होता है, वियोग होता है। ऐसा कर्म प्रकृति में क्रोध का उदय आता है तो जीव का भाव में क्रोध होने लगता है, फिर बाद में कोई भी परिस्थिति उसके साथ क्रोध के परिणाम चालू हो जाए, मित्र में लोक प्रकृति का उदय आएगा तो लोक का परिणाम होगा, माया का उदय आ जाएगा तो माया सा का परिणाम होगा। ऐसे तो उदासीनता किससे करना, क्योंकि भीतर के कर्म तो छिन्नमस्त जीव को दिखाई नहीं देता, वो तो केवल ज्ञान के दिखने की चीज है। बाहर में जो निमित्त है जिसके साथ परिणाम बिगड़ता है वो मान माया लोक के परिणाम हो जाता है, वह उदासीन हो जाना, उदय में उदासीन रहना, उदय में अपेक्षित नहीं रहना। जितनी अपेक्षाएं ज्यादा उतना दुख ज्यादा, ये इसका सिद्धांत है, नियम है, ये विज्ञान है, वस्तु स्थिति है। उपेक्षा हुई तो कोई दुख का कारण नहीं बनेगा, तो उपेक्षा तो कहां से आ गई, निरस हो गए तो रस हो तो उपेक्षा आएगी नहीं, अपेक्षा आएगी तो निरस कैसे हो गए। कि अपना जो सुख का प्रयोजन है वो वहां से सद्धता नहीं, सुख मिलता नहीं, इसलिए सुख मिलता हो तो अपेक्षा करो, जब सुखी नहीं मिलता है तो अपेक्षा क्यों करना। अपेक्षा नहीं करना इसका मतलब उपेक्षित होना है। सुख आत्मा में है, आत्मा का सुख आत्मा के बाहर कहीं नहीं। इस वस्तु स्वरूप के ज्ञान अनुसार, वस्तु के स्वरूप ज्ञान अनुसार उदासीनता होनी चाहिए। पता तो उदासीन बहुत से लोग होते हैं धर्म के क्षेत्र में, त्याग करते हैं, विराग करते हैं, लेकिन वस्तु के स्वरूप ज्ञान अनुसार नहीं होना चाहिए। वस्तु के स्वरूप ज्ञान अनुसार उदासीनता आवे वो सही उदासीन, वरना तो दुख गर्भित वैराग होता है, मान गर्भित वैराग होती है, लोभ गर्भित वैराग होता है, माया गर्भित वैराग होता है, क्रोध गर्भित द्वेष गर्भित भी वैराग होता है, वो सच्चा वैराग से नहीं है, वो उदासीनता सच्ची नहीं है। वैराग कहो या उदासीनता कहो वो सच्ची नहीं है। ज्ञान गर्भित उदासीनता होनी चाहिए, और वो ज्ञान कौन सा, तो वस्तु स्वरूप का ज्ञान। किसी भी जड़ पदार्थ संयोग में मेरा सुख ने आत्मा का, मैंने मेरा सुख में और मेरा सुख मेरे आत्मा, ऐसा जो वस्तु स्वरूप का ज्ञान है तो सुख के कारण से रस और अपेक्षा होती है, जब सुख नहीं है तो रस अपेक्षा सहज नहीं। रेत में से बालू में से कोई तेल निकालने का प्रयास इसलिए नहीं करता कि तेल निकलता नहीं तो रस आएगा नहीं, तेल निकालने के परिणाम क्या रस आएगा। अच्छा, उदासीनता का सेवन करा उतना ही नहीं लिया, उदासीनता के क्रम का सेवन करना, एक क्रम सूचित बात लिया। खास करके हमारे जिनागमों में क्रम का विषय जो है एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कृपालु देव के वचनामृत में यह विषय आया है, पत्रांक 83 में, 83 पूरा पत्र जो है शायद मनसुखराम सूर्यराम को लिखा हुआ, क्रम का बहुत सुंदर बात किया है। ऐसा स्पष्ट क्रम का बात किया होगा कोई अन्य ग्रंथ में देखा नहीं जाता, संकेत बहुत जगह मिलता है, लेकिन क्रम की ऐसी सीधी बात की हो ये 83 नंबर के पत्र में बहुत अच्छी बात किया है। इसका मतलब क्या है, कि जैसे कोई भी कार्य है अपने क्रम से होता है, एक आदमी भी बड़ा होता है तो पहले बालक होता है, फिर युवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, एक रोटी भी बनती है तो पहले गेहूँ आता है, साफ सुथरा होता है, फिर आटा बनता है, फिर उसका जो प्रक्रिया है बनकर उसकी रोटी। तो ये सुख दुख है वो भी एक साइंटिफिक पोजीशन है जीव की, ओरिएंटेड पोजीशन है कि जिससे सुख दुख होता है, इसका भी एक विज्ञान है इसके पीछे। क्योंकि आत्मा एक पदार्थ है जिसमें अपने आप का गुणधर्म होता है, तो गुणधर्म अनुसार उसकी सुख दुख की प्रक्रिया होती है, तो उसका भी कोई क्रम होना चाहिए। ये विज्ञान है, साइंस है, कोई ऑर्थोडॉक्स ही नहीं, अंधश्रद्धा का भी सही नहीं। जबकि ये करुणाजनक हमारे समाज की स्थिति है कि धर्म का अनुसरण, जो धर्म का जो धार्मिक फॉलोअर्स होते हैं बहुत बार अंधश्रद्धा में होते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने सब बात की है कि देखो ये विज्ञान है, और विज्ञान के उसकी आत्मा के गुणधर्म को देखो, जड़ परमाणु के गुणधर्म को समझो, आपस में दोनों का एक्शन रिएक्शन क्या होता है उसको समझो, तो तुमको कैसे दुख, क्यों दुख होता है, क्यों सुख होता है उसका पता चल जाएगा। और तुम कभी दुखी हो गए संसार में, तुम्हारा संसार में रहते हुए दुख का अभाव और सुख की सही सुख की आत्मिक सुख की शुरुआत हो जाएगी, आगे जाके निर्वाण पद में अनंत ज्ञान अनंत सुख के साथ, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख के साथ शादी अनंत का रहना हो जाता है। क्रम का बात बन गया है, उस क्रम का विषय 194 में मिलता है कि चार प्रकार का प्रतिबंध होता है, उनसे उससे उदासीन होना, प्रतिबंध से उदासीन होना। एक समाज प्रतिबंध है, दूसरा कुटुंब प्रतिबंध है, तीसरा देह प्रतिबंध है, और चौथा संकल्प विकल्प प्रतिबंध है। वहाँ चारों की बात नहीं है, अलग अलग जगह अलग अलग जो बात आई है उसको कोऑर्डिनेशन में लेना चाहिए। यहाँ भी यहाँ एक जगह तो सब बात आएगी नहीं, कोई बात कोई पत्र में है, कोई बात कोई फॉर्म पेज पर है, कोई बात कोई तो जहाँ जो किस बात का मेल बैठता हो उसका कोऑर्डिनेशन बिठाना चाहिए, जिससे ये जो विषय वो सांगो पांग समझ में आ जाए। तो उदासीनता का क्रम सेवन करने में समाज से उदास हो जाना, समाज से उदास कैसे हो, हमारी इज्जत आबरू तो समाज में है, इज्जत आबरू कहाँ होती है, समाज वालों के साथ होती है उदासीन। इस इज्जत आबरू से सुख होने वाला, जितने इज्जत आबरू बढ़ाने को जाएगा उतनी उपाधि भी बढ़ती जाएगी। तो अनुभव सिद्ध बात है क्या नहीं है, है हम लोगों को ये हमारे लिए क्या सोचता है इसकी चिंता, वो क्या सोचता है इसके इसकी हमको सोचना पड़ सोचनी पड़ती है। इसका कभी क्या विचार आ जाएगा, किसे क्या भरोसा क्या ठिकाना, किसके दिमाग में हमारे लिए कब कैसी बात आएगी इसका कोई ठिकाना है क्या, और किस किस की हम ध्यान रखेंगे और रख सकते हैं, रख सकेंगे भी कितने कितने की, ये तो संभव नहीं है। हम सही रास्ते पे चले, फिर किसी को जो भी हमारे लिए भाव आए, हमें इसकी अपेक्षा नहीं रखनी है, हमें तो अपेक्षित होना है। हमारा समाज से कोई लेना देना नहीं, समाज के साथ व्यवहार नहीं होता है, तो व्यवहार व्यवहार की जगह पे है, हमारा व्यवहार सज्जनता पूर्ण हो बस बात करें, इसी से हम दुर्जनता पूर्ण हो, दुर्जनता हमारा व्यवहार नहीं करें, और ये तो सहज कर सकते हैं। फिर भी इस अपेक्षा से नहीं कि इस कारण से हमारी इज्जत आबरू अच्छी हो जाए, किस कारण से? ये तो हमारा ड्यूटी है, हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है कि हम सभी ऐसे बर्तन करें, इज्जत आपको बढ़ाने के लिए, वरना दुखी हो जाएंगे। क्योंकि कितना भी प्रयास करेंगे, अगर अपयश कीर्ति नाम के नाम कर्म की प्रकृति होती, इसका उदय आएगा तो अच्छे से अच्छा व्यवहार करने वाले का लोग बुरा बोलेगा। और यश कीर्ति नाम कर्म का उदय आएगा तो जैसा कैसा भी आदमी होगा, ठिकाना नहीं कुछ भी होगा, लोग वाहवा करें, चलो उसका नाम समारंभ करो, मेहमान सम्मान समारंभ करो। हाँ, ये बात तो वहां की नहीं की है, पूर्व कर्म के प्रारंभ का इससे उदासीन होगा, ये उपाधि करने लायक नहीं है। खास करके धार्मिक दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से इसमें इसको का जो नुकसान है तो वो है कि समाज प्रतिबंध से लोक दृष्टि यानी लोक संज्ञा का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। जब हमें इस लोक संज्ञा का व्रता भी पालन करेंगे तो हमारी इज्जत उतनी होगी, और हमारा इतना शास्त्र ज्ञान होगा तो हमारी इज्जत उस प्रकार की होगी, कुछ न कुछ विशेषताएं आ जाएगी और लोग के नजर में, लोगों के नजर में ये विशेषता का गिनती हो जाएगी, हमारा मान सम्मान इज्जत आबरू बढ़ेगी, तो ये दुख का कारण हो जाएगा। इसको लोक संज्ञा, लोक दृष्टि कहते हैं। आया है, जिस जिंदगी का ध्रुव काटा, ध्रुव काटा मैंने उसका लक्ष्य जो खिसकता नहीं है, ध्रुव काटा में खिसकता नहीं है, वो लोक संज्ञा गालिब होगी। वो चाहे कितना भी निरोगी हो, चाहे कितना भी श्रीमंत हो, चाहे कितना भी सत्ता वाला हो, राजा महाराजा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो भी कुछ हो, वो सर्वजी हो, कुछ भी हो, निर्वस्त्र हो, महापत लिया है, मुनिराज होते नहीं निर्वस्त्र, नग्न भाव मंद भाव सह स्नान वृंद दौन आदि परम प्रति निर्वाण पद को प्राप्त करेगा, आत्मशांति से निर्वाण पद को प्राप्त करेगा। उदासीनता के क्रम में पहले समाज को गौण करना पड़ता है, पीछे कुटुंब परिवार को भी गौण करने के बाद, क्यों कि जितना परिवार में जितना संबंध अपेक्षित संबंध है वो अपेक्षा दुख जाएगी। हमारे परिवार से हम जितनी अपेक्षा रखेंगे उतना ज्यादा दुख नहीं, ये तो लौकिक में भी समझदारी की चीज होती है। अभी तो भाई साहब ने किताब भेजा कर जीवन मंदिर का कलश, उसमें वही बात लिखा है, मेरा बेन भटवाल नगर के हमारे मेरा भट भाव नगर का उनको प्रत्यक्ष परिचय नहीं है, लेकिन मान भाई भट्ट को बराबर मान भाई भट्ट को क्या लगती है मान भाई भट्ट की लगती है भावना दिखा है तो वृद्धावस्था में लोग क्यों दुखी होते हैं? परिवार तो अपना बड़ा, लड़के लड़की पोता पोती फिर अपेक्षा रखने लगता है, मेरे से वो अपेक्षा, मेरे से मैंने तुरंत स्पर्श नहीं किया, मैंने तुरंत को छूते नहीं, मेरे को मेरे सामने नहीं देखते, मेरे पूछते नहीं, मेरे से बात करते नहीं, मेरे से वो होते नहीं, वो होते नहीं, सब दुखी होने का रास्ता काफी चिंतन किया है। उपेक्षा नहीं रखना, वही उपेक्षा रखना। उपेक्षित होगा 50 साल के बाद हर मनुष्य इस घर का मेहमान होगा। वैसे तो पूरा जन्म से मेहमान है, लेकिन 50 साल में तो क्या है कि उसने मेजर परसेंट ऑफ द लाइफ है वो भोग लिया। आयु का बड़ा भाग तो उसने भोग लिया, क्योंकि कोई 60 कोई 70 कोई ऐसे में चला जाता है, 90 में 1-2% रहता है। तो 50% से ज्यादा हो गया ना, फिर तो कोई अनिश्चित काल है, कोई किसी का निश्चित काल तो है। तो मेहमान भी माथा मारता है किसी के घर में, जो मेहमान बन कर जाता है तो कोई माथा मारता नहीं, उसको तो माथा ही मत मारो। जिसको जैसा करना हो करो, हमको कुछ अपेक्षा रखनी नहीं है। अपेक्षा रखेगा उसका कुछ होगा, इसलिए उपेक्षा की बात किया। और खास करके अपनापन जितना ज्यादा होता है उतनी अपेक्षा बढ़ती है, तो उसका दुख बढ़ता है। सबसे ज्ञानी अपने परिवार से मम्मत को छुड़ाते हैं, अपना मन सुनाते हैं, तो फिर जो सगाई की जो फीलिंग्स है उसमें क्या होता है, ये समस्या आती है। क्या आपस में एक दूसरे का प्रेम नहीं होना, क्या एक दूसरे का प्रेम को छोड़ देना, वो बात नहीं होना, अपेक्षा को छोड़ देना। मेरे हैं इसलिए मेरे प्रति उतनी अपेक्षा मुझे रहती है, वो बात सुखदायक होगी होगी और होगी, ये अनुभव को देखना चाहिए। वास्तव में क्या है, वस्तु के स्वरूप ज्ञान अनुसार देखा ना तो क्या है कि सभी संसारी प्राणी जो है उस संसार में भटकते हुए जीवात्माएं कर्म संयोग से एक परिवार में आते हैं, और इससे ज्यादा क्या है। हम किसी को रखना चाहे तो रख सकते हैं, छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, हमारे अधिकार की तो बात नहीं। जब सभी आत्मा परिभ्रमण करते हुए पूर्व प्रारंभ के अनुसार एक जगह एक परिवार में इकट्ठे होते हैं, तो वहां कैसे अशांति और क्लेश नहीं हो, और कैसे शांति और प्रेम बना रहे, ऐसे एक जीवन जीने की जो कला है, वो कला अगर हमें समझ में आ जाए तो गृहस्थी में भी दुख नहीं होता। वरना किसी के घर में सुख एक घर बता दें, इसकी जो सही समझ है वो सही समझदारी नहीं होती। इसको कुटुंब प्रतिबंध है,